नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर बाल दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने पुरस्कृत होने वाले बच्चों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये बच्चे अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट हैं।
आप जैसे वीर और प्रतिभाशाली बच्चे निरंतर अच्छा काम करते रहेंगे, ये तो शुरुआत है। जिंदगी बहुत उड़ान करने के लिए बाकी है। मुझे लगता है आपके प्रतिभा से भारत जरूर उत्साहित होगा और बहुत सारे बच्चे आपको फॉलो करेंगे। वो भी अपना अपना हुनर दिखाने के लिए वो भी प्रयास जरूर करेंगे।
पुरस्कार के लिए इस वर्ष 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को बहादुरी, खेल तथा सामाजिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर बाल दिवस पर आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री मोदी वहां उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये दिवस सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी के साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की वीरतापूर्ण शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। अत्याचार के सामने अटूट साहस के प्रतीक और कम उम्र में उनका बलिदान भारतीय इतिहास के सबसे मार्मिक अध्यायों में से एक है। प्रधानमंत्री ने जनवरी 2022 में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दौरान प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने वीर बाल दिवस पर वीर साहिबजादों की शहादत को याद किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने माता गुजरी देवी की अटूट आस्था और श्री गुरु गोविंद सिंह जी की अमर शिक्षाओं को याद करते हुए कहा कि ये दिन साहस, दृढ़ विश्वास तथा सत्य निष्ठा का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साहिबजादों का जीवन और आदर्श आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। राष्ट्र आज शहीद उधम सिंह को उनकी 126वीं जयंती पर याद कर रहा है। उनका जन्म वर्ष 1899 में आज ही के दिन अविभाजित भारत में पंजाब के सुनाम गांव में हुआ था। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में आतंकवाद रोधी सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे हैं। 2 दिन का ये सम्मेलन आतंकवादी रोधी अभियानों में लगे सैन्य बलों, तकनीकी, कानूनी और फोरेंसिक विशेषज्ञों के लिए चर्चा का एक मंच है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों और आतंकवाद से उत्पन्न होने वाले खतरों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ समन्वित कार्रवाई के लिए औपचारिक तथा अनौपचारिक चैनल स्थापित करके विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल स्थापित करना है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के लगातार बढ़ते खतरों को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सुरक्षा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। ये अगली पीढ़ी की प्रणाली केंद्र शासित प्रदेश के सीमावर्ती और भीतरी इलाकों में निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने तथा त्वरित कार्रवाई तंत्र को बेहतर बनाने के लिए तैयार की गई है। बांग्लादेश की अपदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बांग्लादेश में गैर मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार कर रही है। सुश्री हसीना ने यह भी कहा कि अवैध रूप से सत्ता हथियाने वाली वर्तमान सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों को जलाकर मार डालने जैसी दिल दहलाने वाली घटनाएं करा रही है। उनका यह बयान पिछले सप्ताह बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या किए जाने की घटना के संदर्भ में है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और परिचालन की निरंतरता संतुलित करने के उद्देश्य से आज से यात्री किराए ढांचे को युक्तिसंगत बना दिया है। उपनगरीय सेवाओं और सीजनल टिकटों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित किराया केवल आज के बाद बुक किए गए टिकटों पर लागू होगा। इससे पहले बुक किए गए टिकटों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संथाली भाषा में संविधान के प्रकाशन की सराहना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका विमोचन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इससे संवैधानिक जागरूकता और लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में शीतलहर की संभावना व्यक्त की है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज तिरुवनंतपुरम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।